ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन, प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदि देव प्रजा पिता श्री बोलते ध्वनियों, ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ज्योति, दिव्य दर्शन दिव्य वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई, एक तार में बंध के सारे बोलते बनियों, से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, शिव बाबा पधारे ओ।
ओम शांति, गुड मॉर्निंग। आज है सद्गुरुवार, आज हम सद्गुरु बाबा के वरदानी महावाक्य 3 तारीख के सुनेंगे। मीठे प्यारे बाबा, आज अपनी महिमा की स्मृति दिला रहे हैं। भगवान को कहते हैं पदिता पावन, कांटों को फूल बनाने वाला महाकाल। सारी महिमाएं हैं, परंतु वो भोलानाथ है। भोलानाथ क्यों? सारे सृष्टि का रचयिता, पतित पावन, ज्ञान का सागर, परंतु उसको भोलानाथ, क्योंकि नीचे से नीचे स्तर की आत्माओं को भी लायक बनाते हैं। सर्वशक्तिमान बाबा अपनी शक्ति से बच्चों को ज्ञान योग सिखा करके बहुत ही लोएस्ट आत्माओं को भी हाईएस्ट बना सकते हैं, इसीलिए उसको भोलानाथ कहा गया है। बबुलनाथ भी कहा गया, बिल्कुल विकारों से ग्रसित आत्माओं को, उनके कांटे रूपी विकारों को निकालते हैं, फूल समान दिव्य गुणों से संपन्न बनाते हैं। तो इस तरह से बाबा ने आज स्मृति दिलाया, तो सतगुरु बाबा के हम ब्लेसिंग्स उस स्वरूप में स्थित होकर के बार बार बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तो आज हम आत्मा स्वरूप में स्थित होकर के सतगुरु के वरदानों को अपनी बुद्धि में भरते जाएं, बुद्धि रूपी झोली को भरपूर करें। तो सुनेंगे प्यारे बाबा के महावाक्य। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे नाम रूप से न्यारी कोई भी चीज नहीं होती। नाम रूप से न्यारी कोई भी चीज नहीं होती, आत्मा व परमात्मा को भी। नाम रूप से न्यारा नहीं कहेंगे, उसमें भी अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है। नाम रूप से न्यारी कोई चीज हो ही नहीं सकती, आत्मा परमात्मा कहा ही है ना, नाम आत्मा परमात्मा, तो वो भी नाम रूप से न्यारे हो नहीं सकते, क्योंकि उनमें अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है। आज की मुरली का प्रश्न है, शिव बाबा को भोलानाथ कहकर याद करते हैं। शिव बाबा को भोलानाथ कहकर याद करते हैं, उसे भोला क्यों कहा है? उसे भोला क्यों कहा है? उत्तर है, क्योंकि बाप ही अहिल्याओं, गणिकाओं, कुब्जाओं का उद्धार करते हैं। बाप ही अहिल्याओं, गणिकाओं, कुब्जाओं का उद्धार करते हैं, उन्हें विश्व की राजाई का वर्षा दे देते। मनुष्य तो बाप के लिए कह देते, कौन सी बात कहते हैं, दुख भी वह देता, सुख भी वह देता, परंतु बाबा कहते हैं मैं तो तुम बच्चों के लिए सुख का राज्य स्थापन करता हूं, मुझे दुख हरता सुख करता कहा गया है। मनुष्य कह देते हैं दुख सुख बाप ही देता, परंतु बाबा कहते हैं मैं बच्चों के लिए सुख का राज्य स्थापन करता हूं। तुम कहते हो दुख हरता सुख करता। विचार करो कि मैं बाप अपने बच्चों को दुख कैसे दे सकता हूं। गीत है दूर देश का रहने वाला। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना अर्थात रूहों ने इस शरीर के कान रूपी कर्मेंद्रियों द्वारा गीत सुना। दूर देश से मुसाफिर आया है। बाबा कहते हैं तुम सब मुसाफिर हो ना, जो सब मनुष्य मात्र आत्माएं हैं वो सभी मुसाफिर हैं। आत्माओं का कोई भी घर नहीं है, आत्मा है निराकार, निराकारी दुनिया में रहने वाली निराकारी आत्माएं हैं, उसको कहा जाता है निराकारी दुनिया में रहने वाली निराकारी आत्माएं, उसको कहा जाता है निराकारी आत्माओं का घर। बाबा कहते हैं यहां किसी भी आत्मा का घर नहीं है, घर हमारा निराकारी दुनिया। निराकारी आत्माओं का घर, देश व लोक, इसको इस दुनिया को जीव आत्माओं का देश कहा जाता है। वह है आत्माओं का देश। फिर जब आत्माएं यहां आकर शरीर में प्रवेश करती है तो निराकार से साकार बन जाती है। ऐसे नहीं कि आत्मा का कोई रूप नहीं है, रूप भी जरूर है, नाम भी है, आत्मा नाम ही तो है ना, रूप भी है। इतनी छोटी आत्मा, इमेज करो कितनी छोटी आत्मा कितना पार बजाती है इस शरीर द्वारा। हर एक आत्मा में पार्ट बजाने का कितना रिकॉर्ड भरा हुआ है। छोटी सी आत्मा कितना रिकॉर्ड भरा हुआ है, रिकॉर्ड एक बार भरा जाता है, फिर कितना भी रिपीट करो वही चलेगा। वैसे आत्मा इस शरीर के अंदर रिकॉर्ड है, उसमें 84 जन्मों का सारा पार्ट भरा हुआ है। जैसे आत्मा निराकार है वैसे बाप भी निराकार है। कहां कहां शास्त्रों में लिख दिया है कि वह नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई वस्तु होती नहीं। नाम बोला है ना, कोई चीज माना ही उसका नाम है। आकाश भी पोलार है, नाम रूप तो है ना, बिगर नाम के कोई भी चीज होती नहीं। मनुष्य समझते हैं परमपिता नाम रूप से न्यारा है। अगर नाम नहीं तो रूप भी नहीं, देश भी नहीं, फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। बुलाते भी हैं नाम नहीं तो रूप भी नहीं, रूप नहीं तो देश भी नहीं, बुलाते भी हैं। दूर देश का रहने वाला परम पिता परमात्मा। अब दूर देश में आत्माएं भी रहती है, यह साकार देश है। इसमें दो का राज्य चलता है, राम राज्य और रावण राज्य। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। यह बच्चों को समझाया गया है कि सतयुग से ईश्वरीय राज्य शुरू होता है, राम राज्य स्थापित करने वाला। राम राज्य को हो, ईश्वरीय राज्य को हो, उसी को राम राज्य स्थापन करने वाला परमपिता परमात्मा है। वह कभी रावण राज्य स्थापन कर न सके। ये बात क्यों कहते हैं बाबा? राम राज्य स्थापन करने वाला ईश्वर, वह कभी रावण राज्य स्थापन नहीं कर सकते, क्योंकि सुख दुख ईश्वर ही देता कहते हैं। इसीलिए बाप बच्चों के लिए कभी दुख का राज्य थोड़े ही बनाएंगे। कहते हैं ईश्वर ही सुख दुख देते हैं। बाप कहते हैं मैं बच्चों को दुख कैसे दे सकता हूं, मेरा तो नाम ही है कौन सा, दुखहर्ता सुखकर्ता। यह तो मनुष्यों की भूल है। ईश्वर कभी दुख नहीं देंगे। इस समय है ही दुख धाम। कई बच्चों से भी बाबा ऐसे क्यों, नहीं ये भी नहीं आना चाहिए, बाबा कभी दुख नहीं दे सकते। आधा कल्प रावण राज्य में दुख ही मिलता है, सुख की रत्ती नहीं। सुख धाम में फिर कभी दुख होता नहीं। बाप स्वर्ग का रचयिता है। अभी तुम हो संगम पर। इनको नई दुनिया तो नहीं कहेंगे, नई दुनिया का नाम ही है स्वर्ग, वही फिर पुरानी दुनिया बनती है। नई चीज जब पुरानी खराब दिखाई पड़ती है तो पुरानी चीज को बिल्कुल ही डैमेज हो जाती है, वो चीज को क्या करते हैं, खलास किया जाता है। बाबा हमें याद दिला रहे पुरानी दुनिया बिल्कुल ही खराब हो चुकी है। मनुष्य विश्व को ही सुख समझते हैं, विकारों को ही सुख समझते हैं। गाया भी जाता है कौन सा गायन, अमृत छोड़ विष काये को खाए। ग्रंथ में गुरु नानक के भी अक्षर हैं, अशंख चोर। बाप की महिमा गाते हैं, आप जो करेंगे उससे भला ही होगा। भगवान जो करेगा उससे सब भला ही होगा, नहीं तो रावण राज्य में मनुष्य बुरा काम ही करेंगे। बाप ही आकर मूत पलीती कपड़े धोते हैं। ग्रंथ में बहुत लिखा हुआ है। बाबा कहते हैं सिंधी लोग ग्रंथ रखते हैं। अब यह तो कोई सिख धर्म वाले है नहीं, यह तो है, बाबा कहते हैं सिंधी लोग ग्रंथ साहिब रखते हैं, लेकिन वो सिख लोग है नहीं, यह तो आदि सनातन देवी देवता धर्म के, सिखों का है गुरु नानक, उनको दाढ़ी बाल देते थे तो सब सिखों को दाढ़ी बाल होने चाहिए, आजकल तो दाढ़ी रखते नहीं, बहुत फैशनेबल बन गए हैं, नहीं तो फॉलो करना चाहिए ना, बेसिक है तो पूर्ण रूप से उसको फॉलो करना चाहिए। हम गुरु नानक के फॉलोअर्स हैं तो गुरु नानक को फॉलो करना चाहिए ना, यह तो बच्चों को अभी पता पड़ा है। कौन सी बात का? कि गुरु नानक को 500 वर्ष हुए, फिर कब आएंगे तुम झट बताएंगे। कोई से भी पूछो, यह तो बताओ कि गुरु नानक कब आएंगे, तो कहेंगे उनकी आत्मा ज्योति जोत समा गई। सिख लोग तो यही कहेंगे ना, आत्मा ज्योति जोत समा गई। आएंगे फिर कैसे? तुम कहेंगे क्या कहेंगे? हम आज से 4,500 वर्ष बाद गुरु नानक फिर आएंगे। तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्र लगाती रहती है, सारा स्मृति में आता रहता है ना, बुद्ध क्राइस्ट आदि सबके लिए कहेंगे। इस समय बुद्ध क्राइस्ट आदि सबके लिए क्या कहेंगे? इस समय तमो प्रधान है, कब्र दाखिल है, इनको कयामत का समय कहा जाता, सारा संसार का ही कयामत का समय। सब मनुष्य मात्र जैसे मरे पड़े देह भान में हैं, खुद को भूले हैं, सब की ज्योत जैसे बुझी हुई है। बाप आते हैं सबको जगाने। बाबा कहते हैं बच्चे जो काम चिता पर बैठ भस्म हो गए हैं, उन्हों को अमृत वर्षा से जगाकर साथ ले जाएंगे। माया ने काम चिता पर बिठाए, कब्र दाखिल कर दिया है, सो गए। भैया यहां भी कोई सोए तो नहीं? अब बाप अमृत छकाते हैं। अमृतसर नाम इसीलिए रखा है, बाप आकर अमृत छकाते हैं। अब कहां ज्ञान अमृत, कहां पानी की बात। सिख लोगों का बड़ा दिन होता है तो बड़ी धूमधाम से तालाब को साफ करते हैं, मिट्टी निकालते, इसीलिए नाम ही रखा है अमृतसर, अमृत का तालाब। अब गुरु नानक साहेब तो कोई ज्ञान का सागर है नहीं, उसने भी बाप की महिमा की है, खुद कहते हैं भगवान की महिमा की है ना, एक ओंकार सत नाम, वह सदैव सच बोलने वाला है। जैसे गीता में कई बातें सच है, वैसे ग्रंथ साहिब में भी कुछ बातें बिल्कुल सत्य हैं। बाबा की महिमा, एक ओंकार सत नाम, वह सदैव सच बोलने वाला। सत्य नारायण की कथा है ना, बाबा याद दिला रहे हैं, सिंधुवर्ती लोग बाहर जाते हैं तो सत्यनारायण की कथा कराते हैं। वैसे ये प्रथा भी है ना, कहीं भी कुछ करना होता, कहीं जाते हैं तो सत्यनारायण की कथा समझते हैं। सत्यनारायण की कथा से सेफ्टी से पार हो जाएंगे। अमर कथा तीसरी की कथा, कितनी भक्ति मार्ग में कथाएं सुनते आए। कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, जो जो पर्व होता वो कथा, वही कथा सुनाएंगे। तो बाबा कहते शंकर को, शंकर जी ने पार्वती को कथा सुनाई, वह तो सूक्ष्म वतन में रहने वाला, वहां फिर कथा कौन सी सुनाई। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं, वास्तव में तुमको अमर कथा सुनाकर अमर लोक में ले जाने आया हूं। बाबा हमें कह रहे हैं अमर कथा, ये है अमर कथा, सुनाकर मैं तुम्हें अमर लोक में ले जाने आया हूं। मृत्यु लोक से अमर लोक में मैं ले जाता हूं। बाकी बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन में पार्वती ने क्या दोष किया जो आकर उनको कथा सुनाएंगे। कथा तो यहां की जरूरत है ना, अभी तुम बच्चे समझते हो। हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। यह है अमर लोक में जाने के लिए सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा, तीसरी की कथा। तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तीसरी की कथा कौन सी, तीसरा नेत्र प्राप्त करने की कथा। बाप समझाते हैं, बाबा हमें फिर से याद दिलाते हैं, तुम ही गुलगुल पूज्य थे, फिर 84 जन्मों के बाद तुम ही पुजारी बने हो, इसलिए गाया हुआ है। कौन सा गायन, आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। बाप कहते हैं मैं तो सदैव पूज्य हूं, ये भगवान के लिए नहीं हम आत्माओं के लिए है, सदैव पूज्य है बाप। तुमको आकर पुजारी से पूज्य बनाता हूं। कहते हैं हे राम आकर हमको पावन बनाओ। सब भगत पुकारते हैं, आत्मा पुकारती है ना, हे पतित पावन, अभी तुम समझते हो। कौन सी बात समझते हो, आत्मा पुकारती है पतित पावन। फिर बाबा कहते अभी तुम समझते हो कि गीता कोई श्री कृष्ण ने नहीं सुनाई, पावन बनाने वाला एक ही परमपिता परमात्मा है, एक ही राम है। पतितों को पावन बनाने वाला गीता ज्ञानदाता एक ही राम। तो बाप समझाते हैं कि ओपिनियन लेते रहो कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, गीता का भगवान शिव है ना कि श्री कृष्ण। कोई वीआईपी आते हैं बाबा कहते उनसे ओपिनियन लो, पहले तो पूछो भगवान किसको कहा जाता है, निराकार को व साकार को। श्री कृष्ण तो है साकार, शिव है निराकार, वह सिर्फ इस तन का लोन लेता है, बाकी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं। शिव बाबा लोन लेते हैं इस तन का। तो बाबा कहते हैं पहले नंबर गर्भ में आने वाली है श्री कृष्ण की आत्मा। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी सूक्ष्म शरीरधारी है, शिव को शरीर नहीं, यहां इस लोक में स्थूल शरीर है, बाप की महिमा है। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण नंबर वन पहले जन्म लेने वाला शरीरधारी, श्री कृष्ण को शरीर है, बाप को शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी सूक्ष्म शरीरधारी, तो इस लोक में स्थूल शरीर है, बाप की महिमा है, पतित पावन सर्व का सद्गति दाता, सर्व का लिबरेटर, दुखहर्ता सुखकर्ता। तो बाबा ये कह क्यों रहे हैं, क्योंकि इस दुनिया में पतितों को पावन बनाने, लिबरेट करने, उसको शरीर का आधार लेना पड़ता। अच्छा, सुख कहाँ हो सकता है? सुख मिलेगा, सुख कहाँ हो सकता है? बाबा कहते हैं सुख मिलेगा दूसरे जन्म में, जब रावण की दुनिया खत्म हो, स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। इस कलयुगी दुनिया में सुख नहीं, हमें नहीं है सुख, ईश्वरीय अतीन्द्रिय सुख है हमें, है ना, कलयुगी सुख नहीं उससे उठ के। अच्छा, बाबा कहते हैं अच्छा लिबरेट किससे करते हैं? रावण के दुखों से, यह तो दुख धाम है ना। अच्छा, फिर गाइड भी बनते हैं, यह शरीर तो यहां ही खत्म हो जाते हैं, बाकी आत्माओं को ले जाते हैं, सबको दुखों से छुड़ाए, पवित्र बनाए, घर ले जाते हैं। लिबरेटर दुखों से छुड़ाए, पवित्र बनाए, उस पवित्र धाम में ले जाते हैं। फिर बाबा एक एग्जाम्पल बताते, मनुष्य जब शादी कर आते हैं तो पहले होता है पति, पीछे होती है ब्राइड, फिर बारात होती है। तो हमें भी बाबा साथ ले जाते हैं, अब साथ चलने के लिए हमें ऐसा संपूर्ण पुरुषार्थ करना है। अब तुम्हारी माला भी ऐसी ही है, ऊपर में है शिव बाबा फूल, पहले फूल को नमस्कार करते हैं, फिर युगलदाना ब्रह्मा सरस्वती, फिर बाबा कहते हैं फिर हो तुम, हमें भी तो नशा होना चाहिए ना, फिर हम जो बाबा के मददगार बच्चे हो। कौन से बच्चे? फूल शिव बाबा की याद से ही सूर्यवंशी विष्णु की माला बनी है, ब्रह्मा सरस्वती सोलक्ष्मी नारायण बनते हैं, देवता क्षत्रिय, फिर शूद्र से ब्राह्मण बन, यह नॉलेज लेकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यह माला उन्हों की बनी हुई है, यह ब्रह्मा सरस्वती ही राजा रानी बनेंगे, उन्होंने मेहनत की है तब पूजे जाते हैं। कोई को पता नहीं कि माला क्या चीज है, भक्ति में माला फेरते उनको क्या मालूम है किस चीज की है, ऐसे ही माला फेरते रहते हैं। 16108 की भी माला होती, माला भी तो 8 की, 108 की, 16108 की बड़े बड़े मंदिरों में रखी जाती है, कॉमन वे में कौन सी होती, वो 108 की माला फेरते हैं, बाकी बड़े बड़े मंदिरों में 16108 की रखी। फिर कोई कहां से खींचेगा, कोई कहां से, भाई इतना लंबा वो कहां से फेरेंगे, चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा घुमा के फिर पटक देते हैं। बाबा बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे, माला जाकर फेरते थे, राम राम जपते थे। फूल शिव बाबा है ना, फूल को ही राम राम कहते हैं, फिर सारी माला पर माथा टेकते हैं। ज्ञान तो कुछ भी था नहीं, ब्रह्मा बाबा का याद दिला रहे, ऐसे बाबा उनका क्रिश्चियनों का भी कहते हैं, पादरी लोग भी हाथ में माला फेरते रहते हैं। पूछो किसकी माला फेरते रहते हो, कहेंगे क्राइस्ट की याद में माला फेरते हैं। उन्होंने बड़े पोप पादरी होते हैं तो फिर पोपों की माला होगी, वो जितने पोप हो गए उनकी माला होगी, उन सबके चित्र हैं। पोपों का कितना मान है, उनको खुद पता नहीं कि क्राइस्ट की आत्मा कहां है, तुम जानते हो, सबसे ऊंचे हो गए ना, तुम जानते हो कि क्राइस्ट की आत्मा भी अभी बेगर रूप में है, तुम भी अभी बेगर टू प्रिंस बन रहे हो, हम बेगर नहीं हैं, प्रिंस बन रहे हैं, भारत ही प्रिंस था, अभी बेगर हैं, फिर प्रिंस बनते हैं, बनाने वाला है एक रूहानी बाप, बेगर से प्रिंस बनते हो। एक प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज भी है, प्रेजेंट में भी है प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज, जहां जाकर वह पढ़ते हैं, वो कॉलेज में केवल राज परिवार के बच्चे जो होते हैं ना वही पढ़ते हैं, नहीं अभी नहीं, मैं हूं कॉलेज अजमेर में, फिर भी उस कॉलेज में आज के प्रेजेंट के राज परिवार के बच्चे जरूर पढ़ते हैं। तो बाबा वो याद दिला रहे हैं, देखो उनकी भी अपनी कॉलेज होती है, तुम यहां पढ़कर 21 जन्मों के लिए प्रिंस प्रिंसेस बनते हो, वो ऑलरेडी प्रिंस प्रिंसेस हैं, वो पढ़ते हैं, हम 21 जन्मों के लिए इस कॉलेज में पढ़ के प्रिंस प्रिंसेस बन, नॉलेज से तुम मनुष्य से देवता बनते हो, अभी तुम समझते हो जो श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस था, सो 84 जन्मों के बाद बेगर बना है, 5000 वर्ष पहले देवी देवताएं कितने साहूकार थे, अभी वही कंगाल बेगर बने हैं, वही अपने मूर्ति के आगे हाथ जोड़ के मांगने लगे, यह बातें सिर्फ तुम ही सुन सकते हो। कितने भाग्यशाली हमें भगवानुवाच केवल हम बच्चे ही सुन सकते हैं, भगवानुवाच वह सबका फादर, तुम गॉड फादर से सुनते हो। गीता में सिर्फ भूल कर दी है, जो शिव भगवानुवाच के बदले श्री कृष्ण भगवानुवाच नाम डाल दिया, इसलिए गाया जाता है, क्या गाया जाता, झूठी दुनिया, झूठी माया, झूठी काया, झूठी दुनिया कहा जाता है। इस समय सारी दुनिया क्या है, कांटों का जंगल बन गई है। बॉम्बे में बबुलनाथ का मंदिर है, बाप आकर इन कांटों को फूल बनाते हैं, सब एक तो को कांटा लगाते हैं, अर्थात काम कटारी चलाते हैं, इसलिए इनको कांटों का जंगल कहा जाता है। सतयुग को गार्डन ऑफ अल्लाह कहा जाता है, वही फ्लावर्स सतयुगी फ्लावर्स जो थे कांटे बनते हैं, फिर कांटों से फूल बनते हैं। सतयुग में कभी रावण को नहीं जलाते। रावण पुराना दुश्मन है भारत का। तुम्हारी लड़ाई है रावण से, जिसने आधा कल्प दुख दिया है। आखिरी बड़ी लड़ाई भी होगी, हमारी लड़ाई रावण से आखिरी बड़ी लड़ाई भी होगी। सच्चा सच्चा दशहरा होना है, रावण राज्य ही खलास हो जाएगा। तुमको फिर सोने के महल मिल जाएंगे। रावण इसीलिए वो रावण दशहरा मना के लंका लूटे कहते हैं, सोनी लंका। बाबा कहते हैं रावण खत्म होगा फिर तुमको सोने के महल मिल जाएंगे। अभी तुम रावण पर जीत पहन स्वर्ग के मालिक बनते हो। बाबा सारे विश्व का राज्य भाग्य देते हैं, इसलिए उनको कौन सा टाइटल है, शिव भोला भंडारी कहते हैं। गणिकाएं अहिल्याएं कुब्जाएं सबको बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। कितना भोला है, आते भी पतित दुनिया में, पतित शरीर में है। बाकी जो स्वर्ग के लायक नहीं है, बाबा कैसे नरक की दुनिया में आकर के इससे छुड़ाते हैं। बाकी जो स्वर्ग के लायक नहीं है वह विकारों को छोड़ नहीं सकते। बाप कहते हैं बच्चे अभी यह अंतिम जन्म तुम पावन बनो। यह विकार पॉइजन है जो तुमको आदि मध्य अंत दुखी बना दे। क्या तुम एक जन्म, एक अंतिम जन्म इन्हें छोड़ नहीं सकते? मैं तुमको अमृत पिलाए अमर बनाता बाबा कितना भगवान पतित पावन चाहे तो सबको पावन बना दे, लेकिन बच्चों को सिखाते हैं पावन बनो तो पावन दुनिया का मालिक बनो। इसीलिए कहते हैं एक जन्म पावन नहीं बन सकते, विकार नहीं छोड़ सकते। मैं तुमको अमृत पिलाए अमर बनाता हूं फिर भी तुम पवित्र नहीं बनते हो। विकारों बिगर, सिगरेट बिगर, शराब बिगर रह नहीं सकते हो। बाबा सभी दुनिया के बच्चों को कह रहे हैं ना, बाबा के बच्चे तो ये सबसे मुक्त होके तो बैठे हैं। मैं बेहद का बाप कहता हूं तुम एक जन्म पवित्र बनो तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। तुम जानते हो कौन सी बात जानते हो, कौन सी बात कि बाप आया ही है सारी दुनिया को दुख से लिबरेट कर सुख धाम शांति धाम ले चलने के लिए। बाबा आए ही हैं सबको मुक्त करेंगे, लेकिन जो उसके श्रीमत पर चल करके पावन बन रहे पावन दुनिया के मालिक बनेंगे, नहीं है तो क्या होगा? सजाएं भुगत करके आखिर तो पावन बने बिगर घर जा नहीं सकते। इसलिए बाबा बच्चों को याद दिला रहे हैं कि मैं आया ही हूं इस दुख से लिबरेट कर सुखधाम शांति धाम ले चलने। अभी सब धर्मों का विनाश हो जाएगा, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। पहले सभी लोग हिंदू हिंदू कहते थे, अब कुछ समय से सभी लोग क्या कह रहे हैं मालूम है, सनातन सनातन। जैसे सनातन को ज्यादा नहीं कहते थे, सनातन धर्म, हमारा सनातन धर्म कहते हैं, पहले हिंदू हिंदू कहते थे। तो क्योंकि जैसे जैसे एक कार्य भगवान का चारों ओर फैल रहा है, हम कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म, तो लोग भी सनातन धर्म को कहने लगे। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। ग्रंथ में भी परमपिता परमात्मा को अकाल मूर्त कहते हैं। बाप है, ग्रंथ में काफी अच्छी महिमा है, अकाल मूर्त है, ऐसे एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष है, इस तरह से बाबा की बहुत ही सटीक महिमा उसमें है, इसीलिए बाबा घड़ी घड़ी याद करते हैं। बाप है महाकाल, वह काल तो एक दो को ले जाएंगे, किसी का कहते हैं ना इसका काल आ गया, अरे काल ले गया, लेकिन बाबा कहते मैं काल नहीं महाकाल, मैं तो सब आत्माओं को ले जाऊंगा, इसीलिए महाकाल कहते हैं। एक हमारा गीत है ना, बाबा को बुलाते हैं, मेरे सतयुग में आना रे बाबा, सुना है ना सबने। तो बाबा ने एक बाबा को दादियों ने बुलाया था कि बाबा आप सतयुग में आना, बाबा ने कंप्लेन किया था आप मुझे बुलाते नहीं, याद नहीं करते, यहां याद करते हो, इतना प्यार करते हो, लेकिन भविष्य नई दुनिया में याद नहीं करते, बुलाते ही नहीं हो। तो दादियों ने कहा कि बाबा आप जरूर आना, हमारे सतयुग में जरूर आना, आप स्वर्ग के ठाट बाट देख के जाना। तो बाबा मुस्कुराता रहा, भोलानाथ गीत भी गा लिया, मेरे सतयुग में आना रे बाबा, भोलानाथ मुस्कुरा के सुनता रहा सुनता रहा। बाद में बाबा ने कहा मैं नहीं आ सकता, पहले कंप्लेन किया फिर कहा नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, सतयुग में मैं नहीं आ सकता क्योंकि मेरे साथ काल आता है, सतयुग में काल होता नहीं, इसलिए मेरे को यहां ही आना है नई दुनिया में। इसलिए बाबा कहते हैं मैं तो सब आत्माओं को ले जाऊं, आऊंगा तो होलसेल में सबको ले जाऊंगा, छोड़ूंगा किसी को भी नहीं, प्यार से पढ़ा करके अपने साथ ले जाएंगे, इसीलिए महाकाल कहते हैं। तो महाकाल को केवल संगम पर ही आना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद है बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता बाप दादा को। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, इस अंतिम जन्म में ज्ञान अमृत पीकर अमर बनना है, इस अंतिम जन्म में ज्ञान अमृत पीकर अमर बनना है, स्वयं को स्वर्ग में चलने के लायक बनाना है। स्वयं को स्वर्ग में चलने के लायक बनाना है, बुरी आदतों को छोड़ देना है। दूसरी पॉइंट, अभी पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों के लिए स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस बनना है। अभी पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों के लिए स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस बनना है। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुन, नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करना है। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुन, नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है कम शब्दों द्वारा ज्ञान के सर्व राजों को, कम शब्दों द्वारा ज्ञान के सर्व राजों को स्पष्ट करने वाले, यथार्थ और शक्तिशाली भव। कम शब्दों द्वारा ज्ञान के सर्व राजों को स्पष्ट करने वाले, यथार्थ और शक्तिशाली भव। कोई भी चीज जितनी अधिक शक्तिशाली होती है उतनी उसकी क्वांटिटी कम होती है। जितनी अधिक शक्तिशाली क्वालिटी वाली तो उसकी क्वांटिटी कम होती। ऐसे ही जब आप अपनी निर्वाण स्थिति में स्थित हो, वाणी में आएंगे, निर्वाण स्थिति में स्थित हो वाणी में आएंगे तो शब्द कम लेकिन यथार्थ और शक्तिशाली होंगे। एक शब्द में हजारों शब्दों का रहस्य समाया हुआ होगा। वाणी निर्वाण में रह के वाणी में आएंगे तो जो बोलेंगे, बाबा कहते हैं एक शब्द में हजारों शब्दों का रहस्य समाया हुआ होगा, जिससे व्यर्थ वाणी ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। एक शब्द से ज्ञान के सर्व राजों को स्पष्ट कर सकेंगे, विस्तार समाप्त हो जाएगा। वक्त ही सार में जाने का है। स्लोगन, दिल से बाबा कहना, दिल से बाबा कहना अर्थात खुशी और शक्ति की प्राप्ति करना। दिल से बाबा कहना अर्थात खुशी और शक्ति की प्राप्ति करना। अव्यक्त इशारे आजकल कौन से चल रहे हैं? अब अपने दाता स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। दाता के बच्चे सर्व को देने की भावना से भरपूर बनो। कभी यह संकल्प नहीं करो कि यह हो तो मैं भी यह करूं। ऐसी परिस्थिति हो, वायुमंडल हो, तब मैं यह करूं। दातापन के संस्कार वाले को सब तरफ से सहयोग स्वतः प्राप्त होता है। अंडरलाइन, दातापन के संस्कार वाले को सब तरफ से सहयोग स्वतः प्राप्त होता है, इसलिए मास्टर दाता दूसरों से लेने की भावना नहीं रख सकते। मास्टर दाता दूसरों से लेने की भावना रख नहीं सकते। ओम शांति।
ओम शांति। आज हम सब बच्चों के लिए बहुत ही विशेष दिवस है, क्योंकि गुरुवार हम बच्चों को बाबा के प्यार में ऐसा ले जाता है और बच्चे बाबा के प्यार में खो जाते हैं और बच्चे सदा बाबा बाबा करते रहते हैं। तो आज के दिन हम सब मिलकर के प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे और जो भी भाई बहने आज वतन में जाएंगे बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे वो हाथ खड़ा करो। सब जाएंगे ना, बाबा को बहुत अच्छा लगता है। सभी बच्चे जब वतन में आते हैं तो वतन में जो महफिल होती है वो इतनी न्यारी और प्यारी होती है, और कोई अगर नहीं भी आता है तो बाबा उसको कहीं से ढूंढ करके ले आते, लेकिन वो आना और स्वयं जाना बाबा से खुद मिलन मनाना तो कितनी बड़ी बात हो जाती है। अच्छा, भट्टी वाले भाई बहने हाथ खड़ा करो, भट्टी वाले जाएंगे कि नहीं, क्या बोले, जाएंगे? हाँ तो करो। अच्छा, भट्टी वालों के लिए ताली तो बजाओ। कितने अच्छे बच्चे, और बहुत सुंदर मौका मिला है बाबा के घर में आने का और दो दो प्रोग्राम अटेंड करने का। आज गुरुवार है और कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। कल भी भोग लगेगा, आज भी भोग लग रहा है, कल भी जन्माष्टमी का भोग लगेगा। तो आप सबको कितना बड़ा भाग्य प्राप्त हुआ, तो बाबा के घर आए और बाबा के साथ मिलन मनाना, बाबा के साथ का अनुभव करना। तो अभी हम बाबा को बहुत प्यार से मन में जो भी भाव हो बाबा के सामने रख करके हल्के होकर के जाना है और बाबा से मिलन मनाना है। हम वतन में जाएंगे और बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे और भोग के बाद बाबा जो सुनेंगे उसके बाद पांच लाइन में अमृत होता है। एक लाइन है भाइयों की, जो वो स्टैंड है उस स्टैंड के तरफ, और दूसरी लाइन भट्टी के भाई, हाथ खड़ा करो, भट्टी के भाई यहाँ जहाँ सुरेंद्र भाई बैठे ना इनकी तरफ लाइन होगी। सुरेंद्र भाई आप खड़े हो जाओ ना। हमारे ये सुरेंद्र भाई बाबा के लाडले, बाबा की पालना, यहाँ ओम शांति भवन में बाबा के घर में बहुत पालना ली है और बाबा के ही पुराने रतन हैं। बाबा से मधुबन से बहुत प्यार है, तो इसलिए इनको हालांकि बिजी थे तो भी मधुबन भट्टी का नाम सुनते ही सब कार्य को समेट करके यहाँ पर पहुँचे हैं। बहुत इनके गहरे अनुभव हैं, कैसे योग से शरीर के ऊपर भी हम कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं, वो भी इनके बहुत गहरे अनुभव हैं। एक बार रात की क्लास में रखेंगे। और भट्टी वालों को तो मालूम ही है। टीचर्स बहने हाथ खड़ा करो, ये टीचर्स बहने भी आई हैं, तो इन सब के लिए भी ताली बजाओ। अच्छा, तो मैं बता रही थी भाई आएंगे अमृत के लिए उस काले वो स्टैंड के पास, और भट्टी के भाई आएंगे यहाँ बीच में अमृत के लिए, और भट्टी की जो टीचर्स बहने हैं और माताएं, ये इस दूसरे कैमरा के पास और बाकी अन्य माताएं दो लाइन में होंगी। भाइयों की तरफ वर्षा बहन पहले आएगी अमृत, और इधर बहनों भाइयों की तरफ पहले वर्षा बहन, और भट्टी के भाइयों को अमृत पिलाएगी हमारी विजय बहन, और सविता बहन पिलाएगी टीचर्स और माताओं को। सविता बहन आई है, हाँ, सविता बहन टीचर्स और माताओं को अमृत पिलाएंगी, और मधुबन की हमारी दो बहनें अन्य माताओं को अमृत पिलाएंगी, मंजू बहन और त्रिवेणी बहन। तो अभी हम सब चलते हैं वतन में बाबा के पास, और बाबा को क्या करेंगे, क्या करेंगे बाबा के पास जाके क्या करेंगे, बोलो ना माताएं। पहले भोग लगाओगे, बाबा से मिलोगी नहीं? पहले बाबा के सामने बैठना होता है, बाबा से दृष्टि लेनी होती है, दृष्टि के साथ साथ बाबा से प्यार से बातें करनी होती है। तो क्या करोगी अभी बताओ? बोलो माताएं, बोलो वतन में जाएंगे, कैसे जाएंगे बोलो? ऐसे चल पड़ेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। बोलो हम बहुत प्यार से सूक्ष्म फरिश्ता बन के वतन में जाएंगे और वतन में बाबा के सामने बैठेंगे, बाबा से दृष्टि लेंगे, वरदान लेंगे और मन में जो भी संकल्प है बाबा के पास रख के हल्के हो जाना। संकल्प तो होगा ही नहीं, वतन में पहुंचते हैं तो सब संकल्प खत्म हो जाते हैं ना, संकल्प तो रहेगा ही नहीं। तो इसलिए बाबा के सामने दृष्टि और वरदान, फिर बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे, फिर उसके बाद बाबा जो सुनाएंगे वो सुनेंगे, फिर उसके बाद पांच लाइन में अमृत होगा, एक लाइन भाइयों की, एक लाइन यहाँ भट्टी के भाइयों की, एक लाइन टीचर्स और भट्टी की माता, दो लाइनें अन्य बहनों की होंगी। अच्छा, जो भाई बहने शांतिवन से आए एक रात के लिए हाथ खड़ा करें। अच्छा, थोड़े हैं, वेलकम है। अभी बाबा के भोग के बाद, जैसे अमृत पीने के बाद हम हमेशा बताते रहते हैं, याद कराते, वैसे तो सबको पता है, याद कराते हैं कि सभी का सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का भोजन ऊपर के बड़े डाइनिंग हॉल में होता है, क्योंकि नीचे जो है बैठने की जगह नहीं है, इस बात का भी सबको ध्यान रखना। अच्छा, ओम शांति। हम सब चलते हैं बाबा के पास वतन में। ओम शांति।
लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के।
छोड़ेंगे तेरी याद कर
ना छोड़ेंगे तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। या प्रभु संग संग बाबा, यूं ही आ प्रभु संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते
शांति। आज सत गुरुवार के दिन सबकी स्नेह भरी यादों के साथ जैसे ही मैं वतन में पहुंची, वतन में जाती क्या देखती हूं, बहुत से भाई बहने वतन में मेरे पहले ही पहुंचे हुए हैं और हर एक के मस्तक पर एक बहुत सुंदर स्टार चमक रहा है और बहुत प्यार से इतने खोए हुए थे, ऐसे लग रहा था जैसे कि बहुत कुछ उनको प्राप्त हुआ है, लेकिन बाबा दिखाई नहीं दिए। मैं भी देख रही थी बच्चों के स्नेह का दृश्य, कुछ सेकंड के बाद दूर से देखती हूँ कि बाबा आ रहे हैं और जैसे बाबा नजदीक आए सब बच्चों को देखा तो बाबा तो भी सब बच्चों के स्नेह में खो गए
और सबको स्नेह के बंधन में ऐसा बांधा कि सब बच्चे बाबा के गले की तरफ कोई ऐसे चारों ही तरफ बाबा को जैसे घेर लेते हैं ऐसे घेर लिया। लेकिन मैं क्या देखती थी कि बाबा के हाथ में छोटी सी कोई चीज थी, मेरा भी ध्यान गया और कुछ सेकंड के बाद सभी बच्चों का ध्यान गया बाबा के हाथ में क्या है। तो बाबा ने क्या किया, वो अपने दोनों हाथ पीछे कर दिए। तो बच्चों को ज्यादा और हुआ उत्कंठा हुई कि ये क्यों पीछे हाथ किया है। बाबा ने क्या किया, पीछे करके पीछे एक छोटे सा स्थान था टेबल टाइप, उसके ऊपर रख के उसको कवर कर दिया। अब फिर बच्चों को और संकल्प होने लगा तो बाबा मुस्करा रहे थे। तो बाबा ने कहा जैसे बच्चों को ये संकल्प चल रहा है कि बाबा के हाथ में आज क्या था, लेकिन आज बाबा भी बच्चों को ध्यान से देख रहे हैं कि बच्चों के दिल में और हाथ में क्या है। बाबा ने कहा एक तरफ तो बच्चों के दिल में बार बार बाबा, दूसरी तरफ बच्चों के हाथ में मुट्ठी में बच्चों ने कई प्रकार की चीजें बांध के छिपा के रखी हैं। तो बाबा ने कहा सब अपनी मुट्ठी खोलो। आज मुट्ठी खोलने की बात आए, कोई धीरे से खोलता है, कोई बड़ा खोलता है, कोई उसको और दबा लेता है। बाबा ने कहा, बाबा देख रहे थे कि बाबा को बच्चों ने खुशी है, बच्चों को बाबा से मिलने की दिल में बाबा कहते हैं, लेकिन कभी कभी कई प्रकार की चीजें मुट्ठी में बंद कर लेते। कौन से पुराने संस्कार, पुरानी आदतें, और मैं ही सब कुछ हूँ, और कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं जिसको उन्होंने बंदरों को मुट्ठी में बांध के रखा है। फिर बाबा को कहते बाबा आप हमें वो उड़ना चाहते उड़ने पाते हैं। तो बाबा ने कहा जो मुट्ठी के अंदर कई प्रकार की चीजें बांध के रखी हैं, जब से आप अपना हाथ खुला ऐसे कमल पुष्प की तरह नहीं रखेंगे तब तक आप उड़ नहीं सकते हैं। फिर बाबा ने कहा अच्छा बच्चे देखना चाहते हैं कि बाबा के हाथ में क्या है। बाबा ने कहा अच्छा। तो बाबा ने फिर पीछे से हाथ लगाया और बाबा के हाथ में छोटा सा पुष्पक विमान जो रथ के रूप में था। तो बाबा ने ऐसे किया, बाबा ने कहा बाबा जब बच्चों को वतन में देखते हैं हर एक बच्चे का ओरिजिनल और बच्चे का संपन्न स्वरूप देखते हैं तो मेरा हर एक बच्चा महारथी है, और चाहे वो छोटा है बड़ा है हर एक बच्चा महारथी है। तो आज सब महारथियों को बाबा ये पुष्पक विमान जो रथ के रूप में था वो दे रहे हैं। तो जैसे बाबा ने ऐसे किया ना, सबके पास एक बहुत बड़ा पुष्पक विमान पहुंचता है, और वो पुष्पक विमान जैसे ही पहुंचता है तो बाबा ने कहा इस पुष्पक विमान में बैठ जाओ। अब बैठने के लिए जो पहला कदम था वो कदम पे रखने से पहले उसमें लिखा हुआ था कि बाबा ही मेरा साथी और बाबा की छत्रछाया। तो ये दो कदम थे, बाबा मेरा साथी, मैं बाबा की छत्रछाया। तो जैसे ही वो कदम रखते थे इस स्वरूप में टिकते थे तो अंदर पुष्पक विमान में पहुंचते थे, और पुष्पक विमान के जो मेन सीट है उस पे लिखा हुआ था स्वस्थिति का आसन। और फिर कई बच्चे थे स्वस्थिति में जो नहीं बैठ पाते थे तो वो जो स्वस्थिति का आसन था कभी हिलता था कभी कुछ होता था। तो तो बाबा ने कहा स्व स्थिति के आसन पर बैठो और अभी सारे विश्व का भ्रमण करो, क्योंकि आज बाबा ने सारे विश्व का चक्कर लगाया है। तो बच्चे कहते हैं हाँ बाबा हम जाएंगे। तो जैसे ही वो करने लगते हैं तो जो पुष्पक विमान के नीचे जो पहिए थे, और वो पहिए थे दो थे पहिए, तो दो पहिए ऐसे थे तो किसी का एक पहिया हिल रहा था और किसी का पहिया ऐसा था हिल नहीं रहा था लेकिन वो स्ट्रांग नहीं था। तो जैसे वो उड़ने लगते थे तो वो पहिया जो है वो उससे निकल करके वो कुछ न कुछ चीज से टकराता था। तो बाबा ने कहा कि बच्चे बहुत कुछ करना चाहते हैं और कर रहे हैं, और साथ साथ बच्चों को बाबा ने जो विशेष जिम्मेवारी दी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है, लेकिन अभी भी बच्चों का अंदर का जो फाउंडेशन है वो कभी कभी डावाडोल होता है। तो ये जो व्हील दिखाए दो, बाबा ने कहा ये है फाउंडेशन। फाउंडेशन में बाबा ने पहले से बच्चों को बता दिया है कि परिस्थितियां ऐसी ऐसी आएंगी तो ड्रामा की सीट पर स्थित रहना। और दूसरा फाउंडेशन जो है कि हर सीन के अंदर साक्षी और बाबा को साथी बना करके इस स्थिति में रहेंगे तो जो परिस्थितियां तो आने ही वाली हैं और भिन्न भिन्न रूप से है, नए नए रूप से है, अचानक है, लेकिन बच्चे सेफ्टी में है, बाप की छत्र छाया में है, लेकिन छत्र छाया के साथ बच्चों को विशेष पुरुषार्थ करना है। एक तो स्वमान के आसन पर सदा विराजमान रहना है, दूसरा ड्रामा के हर सीन को साक्षी होकर के देखें, और तीसरी बात बाबा ने कही कि अभी समय अनुसार विश्व की आत्माएं जो भटक रही हैं या उनको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, बच्चों को हर रोज ऐसे लाइट की किरण भेजनी है। फिर बाबा ने वो दृश्य फिर से दिखाया, पहले भी दिखाया था, कई आत्माएं थी ऐसे अंधकार या अंधकार उनको दिखाई दे रहा था। तो बाबा और यज्ञ के जो आधार मुहूर्त हैं वो उनके सामने लाइट की किरणें भेज रहे थे, और जैसे वो भेज रहे थे तो उन आत्माओं को तृप्ति भी हो रही थी और उन आत्माओं को लगता था कि परमात्मा के द्वारा हमें कुछ प्राप्त हो रहा है। तो बाबा ने कहा समय अनुसार बच्चों की एक तरफ अचानक पेपर, दूसरी तरफ मजबूत अवस्था, तीसरी तरफ विश्व की आत्माओं को लाइट की किरणें देनी है, तो ये बच्चों को करना है। तो बाबा ने तो आज बच्चों को ऐसा साधन दिया है, महारथी हैं, पुष्पक विमान पर बैठ करके और सबको लाइट की किरणें भी देते रहे। फिर बाबा ने सबको बहुत प्यार किया, फिर बाबा ने जैसे ही सबको प्यार किया, बाबा को भोग स्वीकार कराया, तो बाबा ने अपने हाथ से सबको भोग स्वीकार कराया। बाबा ने कहा कहां से भी बच्चे आए हैं, मधुबन धरनी पे कदम रखा, बहुत बड़ा भाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन जो वतन में आए तो उससे बढ़कर के अनेक प्रकार के वरदान प्राप्त हुए। तो फिर बाबा ने क्या किया, सबको एक छोटा सा गुलाब का फूल था और वो गुलाब का फूल दिया, और उसके फूल की पंखुड़ियों पर लिखा था बाबा साथी, और दूसरी तरफ लिखा था हर संकल्प को ऐसा शक्तिशाली बनाओ, सफलता साथ है और सफल रहो, सफल करो, ऐसे बाबा ने कहा। फिर बाबा ने सबको याद दिया, और जिन्होंने भोग के लिए कहा था बाबा नैन को विशेष इमर्ज करते हुए दृष्टि देते हुए वरदान देते हुए कहा कि बस अपने संकल्प बाबा के पास रखे, अब हल्के हो जाओ, हर बात में निश्चिंत रहो। सबको याद दिया। ओम शांति।